ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विवेचन, संप्रभुता संबंधी एकत्ववादी सिद्धांत। संप्रभुता क्या है? इस संबंध में 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान ऑस्टिन ने बड़े विशुद्ध रूप से विचार करते हुए इसका बड़ा ही विद्वत्तापूर्ण प्रतिपादन किया है। इस प्रश्न पर कि कानूनी रूप से संप्रभु कौन होता है, उसके अनुसार कोई निश्चित उच्च सत्ताधिकारी मनुष्य जो किसी वैसे ही सत्ताधिकारी के आदेश के पालन करने का अभ्यस्त ना हो, यदि किसी मनुष्य समाज के बड़े भाग से स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में हो, तो वह उच्च सत्ताधिकारी मनुष्य उस समाज में प्रभु होता है और वह समाज उच्च सत्ताधिकारी मनुष्य के सहित एक राजनीतिक व स्वाधीन समाज होता है। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी ये विचार इंग्लैंड की परिस्थितियों से प्रभावित थे। उसने अपने ये विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विधिशास्त्र पर व्याख्यान के में बड़े ही स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किए थे। उसके संप्रभुता संबंधी विचारों पर थॉमस हॉब्स और बेंथम के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसका मुख्य लक्ष्य कानून और परंपरा में भेद करना था। जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधों में उक्त कथन के विश्लेषण से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, संप्रभु कोई निश्चित मनुष्य होना चाहिए। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार के अनुसार संप्रभुता की पहली विशेषता यह है कि संप्रभु कोई निश्चित मनुष्य होना चाहिए। जैसा निश्चित शब्द से स्पष्ट प्रकट होता है, संप्रभु ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट तथा दृष्टिगोचर हो और लोग अब अधिकारों के स्रोत के रूप में उसे स्वीकार कर सके। परिणाम स्वरूप संप्रभुता ऐसी भावनाओं के प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती जिन्हें हम सामान्य इच्छा अथवा प्राकृतिक कानून कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु मनुष्य होना चाहिए, अर्थात संप्रभुता ईश्वर अथवा देवताओं में निहित नहीं मानी जा सकती और ना ही ईश्वरीय कानून जैसी किसी वस्तु को ही ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विवेचन में कोई स्थान मिल सकता है। जैसा गॉर्नर ने भी कहा है, यह सर्वप्रिय सत्ता ना है तो समान इच्छा हो सकती है, और जैसा हमें रूसो ने सिखाया ना मनुष्यों की समष्टि हो सकती है और ना ही निर्वाचन मंडली हो सकती है और ना लोकमत। नैतिक भावना, सहज विवेक या ईश्वरीय इच्छा अथवा ऐसी ही कोई भावना हो सकती है, अपितु वह एक ऐसा निश्चित मनुष्य अथवा ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रतिबंध ना हो। इस तरह से संप्रभुता में निश्चयात्मक का गुण होना चाहिए। दूसरा, संप्रभुता पूर्ण व अनन्य होती है। ऑस्टिन के विचार की दूसरी विशेषता यह है कि सर्वोपरि सत्तावान संप्रभु अपने जैसे अन्य किसी सत्तावान के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि संप्रभु अन्य किसी सत्ता का आश्रित नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं ही स्वप्रिय होता है। उदाहरणतः स्वाधीनता से पूर्व भारत का गवर्नर जनरल भारत में निश्चित उच्च सत्ताधिकारी मनुष्य था, किंतु ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी प्रतिपादन के अनुसार वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि उसे एक सत्ताधारी अर्थात भारत सचिव के आदेशों का पालन करना पड़ता था। इस प्रकार उपयुक्त दृष्टिकोण से यह अभिप्राय हुआ कि प्रभुत्व शक्ति अनियंत्रित एवं अमर्यादित होती है और उसके कृत्यों पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। संप्रभुता इस प्रकार पूर्ण अनन्य होती होती है उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तीसरा, संप्रभु के आदेशों का पालन अधिकांशतः समाज स्थायी रूप में व स्वत करता है। ऑस्टिन के विचार की तीसरी विवेचना यह है कि सर्वप्रिय सत्ताधारी संप्रभु समाज के एक बड़े भाग से स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सत्ताधारी व्यक्ति को संप्रभु तभी कहा जा सकता है जब वह ऐसी स्थिति में हो कि शासित समाज के एक बड़े भाग द्वारा स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन करा सके। समाज के एक बड़े भाग द्वारा आज्ञा पालन व आज्ञा पालन का स्थायित्व, ये दोनों संप्रभुता के आवश्यक तत्व हैं। यदि कोई सत्ताधारी मनुष्य किसी समाज के एक अंश से स्थायी रूप से अथवा समाज के एक बड़े भाग से अस्थायी रूप में ही अपने आदेशों का पालन करा सकता है तो उसे हम संप्रभु नहीं कह सकते। किसी समाज में कोई सत्ताधारी व्यक्ति तभी संप्रभु कहा जा सकता है जब वह अपने आदेशों का पालन समाज के एक बड़े भाग से स्थायी रूप में कराने की स्थिति में हो। ऐसा करके ही वह अपनी सत्ता को अशून्य रख सकता है। चौथा, संप्रभु के आदेश ही कानून है। आदेश मत में संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं और जनता को उनका स्वाभाविक रूप से पालन करना चाहिए। पांचवा, स्वतंत्र राजनीतिक समाज की स्थापना। ऑस्टिन के अनुसार निश्चयात्मक श्रेष्ठ उच्चतर शक्ति द्वारा ही संप्रभुता का निरंतर प्रयोग करते रहने से स्वतंत्र राजनीतिक समाज की स्थापना संभव हो पाती है। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की आलोचना। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी जो विचार व्यक्त किए हैं तथा संप्रभु के स्वरूप का जो निरूपण किया है उसका वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, यह सिद्धांत लोकतंत्रीय राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। यह सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों पर लागू नहीं होता क्योंकि इसका यह प्रतिपादन कि संप्रभु कोई निश्चित व्यक्ति होता है तथा उसमें ही संप्रभुता निहित होती है, लोकतंत्र की इस मान्यता के विपरीत है कि राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है अथवा लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वप्रिय होती है। यदि हम ऑस्टिन के सिद्धांत को मान करके यह स्वीकार कर लेते हैं कि संप्रभु एक निश्चित व्यक्ति होता है और उसी को प्राप्त सर्वप्रिय शक्ति संप्रभुता होती है, तो क्या रूसो द्वारा प्रतिपादित वह सिद्धांत जिसके अनुसार संप्रभुता जनता में निहित मानी जाती है निरर्थक मानी जाती है? अतः ऑस्टिन के विचार की कानूनी संप्रभुता के सामने मानने का परिणाम वस्तुतः यह होगा कि लोक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता दोनों प्रकार की संप्रभुताओं की सत्ता अस्वीकृत करनी पड़ेगी। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र के प्रतिकूल है। दूसरा, संप्रभुता का निश्चय करना कठिन। यह सिद्धांत अनुसार उच्च सत्ताधारी का निश्चित होना आवश्यक है। यह सत्य है कि विशुद्ध वैधानिक रूप से उच्च सत्ताधारी निश्चित होना चाहिए जिससे वह स्पष्टता पहचाना जा सके, किंतु उच्च सत्ताधारी की यह निश्चितता कभी हो सकती है जब उच्च सत्ताधारी कोई एक व्यक्ति हो। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित यह निश्चयात्मक लोक संप्रभुता अथवा राजनीतिक संप्रभुता में नहीं पाई जा सकती। वस्तुतः उनकी सत्ता से ही सर्वप्रिय जिनमें कानूनी संप्रभुता निहित होती है राजनीति प्रभु तथा लोकतंत्र प्रभु की सत्ता होगी। आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्यों में संसद का नियंत्रण निर्वाचक गण करते हैं तथा निर्वाचकों पर स्वयं लोकमत का प्रभाव पड़ता है। अतः संप्रभु को पूरी तरह निश्चित करना संभव नहीं। इस तरह से यह लोक संप्रभुता के अनुकूल नहीं है। तीसरा, संप्रभु की सर्वोच्चता व विधि के एकमत स्रोत की मान्यता अनुचित। यह सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि संप्रभु निरंकुश होता है तथा वह जो आदेश देता है वही कानून होता है, अशुद्ध है। वस्तुतः कानून का क्षेत्र स्रोत केवल संप्रभु ही होता है ऐसी बात नहीं, उसके अन्य स्रोत भी होते हैं। चाणक्य द्वारा प्रतिपादित सत्य पर आधारित धर्म, औचित्य या न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परंपरागत नियम व प्रथाएं तथा राजा के आदेश, इन चार स्रोतों में राजा का आदेश एक स्रोत के रूप में आधुनिक है। विचारधारा के अनुसार तो कानून निर्माण के स्रोत के रूप में राज्य के आदेशों की अपनी कोई पृथक सत्ता हो ही नहीं सकती, अपितु राज्य के द्वारा वे ही कानून लागू हो सकते हैं तथा जनता को वे ही कानून साधारणतः मान्य हो सकते हैं जिनका आधार परंपरागत न्याय व औचित्य हो। सिसरो ने तो यहाँ तक कहा कि कानून लोकमत की अभिव्यक्ति मात्र होता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार तो परंपरागत प्रथाओं, न्याय संबंधी निर्णयों, वैधानिक टीकाओं तथा औचित्य पर आधारित राजकीय व्यवस्थापन को कानून का स्रोत माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून के रूप में आदेश देने की सर्वोच्च सत्ताधारी की निरंकुशता पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उसे अपने आदेशों के लिए विविध परंपरागत राजाओं पर आधारित औचित्य पर निर्भर रहना पड़ता है और वह कानून का एकमात्र स्रोत नहीं होता। दूसरे शब्दों में संप्रभु को ही कानून का एकमात्र स्रोत माना विधि शास्त्र के नियमों के प्रतिकूल है। चौथा, विधि का पालन संप्रभु के आदेश होने के कारण ही नहीं होता। इस सिद्धांत द्वारा संप्रभुता का जो स्वतंत्र प्रतिपादन किया गया है उसमें शक्ति के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया है। इससे यह माना गया है कि उच्च सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन करने की स्थिति में इसलिए होता है कि वह शक्तिशाली होता है, परंतु वास्तविकता यह नहीं होती। वस्तुतः जनता का बड़ा भाग कानून के रूप में राज्य के आदेशों का पालन इसलिए नहीं करता कि वह सत्ताधारी की शक्ति के सम्मुख असहाय होता है, वरन इसलिए करता है कि कानून के रूप में जनता की ही इच्छा अभिव्यक्ति होती है और उसके पालन में उसका ही कल्याण निहित होता है। अतः कानून का संप्रभु को आदेश मात्र नहीं माना जा सकता। पांचवा, व्यवहारिक रूप से आंतरिक दृष्टि से निरंकुश संप्रभु नहीं होता। ऑस्टिन की यह मान्यता है कि संप्रभु आंतरिक दृष्टि से निरंकुश प्रभु सत्तायान होता है। व्यवहार में सत्य नहीं कहा जा सकता। आंतरिक दृष्टि से संप्रभुता को नियंत्रित करने वाले तत्व निम्न प्रकार हैं। पहला, अन्य समुदाय। राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों को सुविधाएं देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति राज्य अनेक स्थानीय संस्थाओं एवं संघों के सहयोग से करता है। राज्य की आंतरिक नीति का प्रभाव प्रत्यक्षतः स्थानीय संघों एवं संस्थाओं पर पड़ता है तथा राज्य की आंतरिक नीति पर इन स्थानीय तत्वों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः जब राज्य कर लगाता है तो किन वस्तुओं पर कर लगे या किन वस्तुओं पर ना लगे, इस संबंध में राज्य के औद्योगिक संगठन, उत्पादक संघ, व्यापारिक वर्ग और श्रमिक संघ सरकार की नीति को प्रभावित करते हैं। ऐसा देखा गया है कि सरकार अनेक वस्तुओं पर कर लगा देती है पर बाद में इन्हीं संस्थाओं के प्रभाव में आकर उसे करों में छूट देनी पड़ती है या अन्य वस्तुओं पर कर लगाना पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य अपनी आंतरिक नीति का निर्धारण निरंकुश ढंग से नहीं कर सकता, उस पर अन्य संघों का नियंत्रण होता है। दूसरा, लोकमत राज्य की आंतरिक नीति को प्रभावित करने वाला दूसरा आवश्यक तत्व जनमत है। जब सरकार के अतिरिक्त कर लगाती है या किसी ऐसी नीति की घोषणा करती है जिससे जनता संतुष्ट नहीं होती, तो उस अवस्था में सरकार के विरुद्ध आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल इत्यादि की जाती है। एक सभ्य सरकार इस प्रकार के प्रदर्शनों को आसानी से अवहेलना नहीं कर सकती और उसे जनमत को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में राज्य को अपने नियमित कानूनों में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी बाध्य होना पड़ता है। अतः यह स्पष्ट है कि राज्य की आंतरिक संप्रभुता एक बड़ी सीमा तक जनमत द्वारा नियंत्रित होती है। जनमत की अवहेलना का परिणाम क्रांति हो सकता है। तीसरा, जन आलोचना राज्य की आंतरिक संप्रभुता के नियंत्रण में आधुनिक प्रचार साधन, उदाहरण समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन तथा विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा की गई आलोचनाओं का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। कहा जाता है कि संसद और विधानसभाओं में विरोधी दलों द्वारा सरकार की जो आलोचना की जाती है उससे सरकार इतनी अधिक प्रभावित नहीं होती जितनी वह रेडियो, समाचार पत्रों एवं विशिष्ट व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होती है। निश्चय ही ये सब साधन ऑस्टिन की इस धारणा को असत्य सिद्ध कर देते हैं कि राजसत्ताधारी का आदेश ही कानून होता है। सभी व्यक्तियों पर जन आलोचनाओं का प्रभाव पड़ता है। चौथा, परंपराएं व रीति रिवाज उपयुक्त तत्वों के अतिरिक्त राज्य की आंतरिक प्रभुसत्ता को नियंत्रित करने में संप्रभु की स्वयं की इच्छा भी एक विशेष स्थान रखती है। संप्रभु की प्रवृत्तियां कैसी हैं, धर्म के प्रति उसकी आस्था कैसी है और जीवन के मूल्यों के बारे में उसके क्या विचार हैं, इन सब का प्रभाव आंतरिक नीति के निर्धारण पर अवश्य पड़ता है। आंतरिक दृष्टि से संप्रभु की इच्छा का नियंत्रण सबसे अधिक रीति रिवाज और परंपराओं से होता है। कानून का उल्लंघन करना सरल होता है, लेकिन रीति रिवाज और परंपराओं का उल्लंघन सरलता से संभव नहीं हो पाता। सर हेनरी मेन ने रंजीत सिंह के परंपरा का उल्लंघन सरलता से विषय में लिखा है कि विश्व के निरंकुश राजाओं के में राजा रंजीत सिंह का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है, परंतु उसके समूचे शासन काल में एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब उसने किसी रीति रिवाज या परंपरा का उल्लंघन किया हो। ब्रिटेन का समूचा संविधान अलिखित है और वह रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित है। संभवतः यह कल्पना नहीं की जा सकती कि यदि आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो वह पद त्याग नहीं करेगा। यद्यपि वहां पर ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अंतर्गत वह पद त्याग करने के लिए बाध्य हो। ठीक इसी प्रकार 1688 की राज्य रक्तिहीन क्रांति से लेकर आज तक एक ऐसा भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जबकि किसी ब्रिटिश राजाध्यक्ष ने संसद द्वारा पारित किए गए किसी कानून पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया हो। यह सब उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि राज्य की आंतरिक प्रभुसत्ता रीति रिवाजों और परंपराओं से बहुत कुछ सीमा तक प्रभावित होती है तथा ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत आंतरिक दृष्टि से खंडित हो जाता है। ये सब तत्व ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों का खंडन करते हैं। छवां, व्यवहारिक रूप से संप्रभु बाहरी दृष्टि से ही निरंकुश हो नहीं है। ऑस्टिन की यह मान्यता कि संप्रभु बाहरी दृष्टि से निरंकुश प्रभुसत्ताधारी होता है, व्यवहार में सत्य नहीं है। जिस प्रकार आंतरिक दृष्टि से संप्रभुता नियंत्रित होती है, उस प्रकार संप्रभुता के बाहरी स्वरूप को भी अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं। पहला, देश की भौगोलिक स्थिति। प्रत्येक राज्य की विदेश नीति पर उसकी भौगोलिक स्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके पड़ोस में कैसे देश बसे हुए हैं, किस हद तक उसे किन्हीं बातों के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ता है, इन सब बातों की परवाह किए बिना कोई राज्य बाहरी संप्रभुता का प्रयोग नहीं कर सकता। किसी देश विदेश की नीति को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व उस देश की विदेश की भौगोलिक अवस्था होती है, क्योंकि कोई भी देश अपनी बाहरी नीति को निर्धारित करने में पड़ोसी देशों की उपेक्षा नहीं कर सकता। अतः यह स्पष्ट है कि भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव संप्रभु की बाहरी नीतियों पर बहुत अधिक पड़ता है। दूसरे शब्दों में यह स्थिति उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं जनमत। जिस प्रकार किसी राज्य की आंतरिक नीति पर स्थानीय संस्थाओं व लोकमत का प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार संप्रभु की बाहरी नीति पर भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं लोकमत का प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः कोई भी सभ्य राष्ट्र राष्ट्रसंघ द्वारा पारित प्रस्तावों की उपेक्षा निरंतर नहीं कर सकता, अंत में बाध्य होकर उसे उन्हें स्वीकार ही करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत भी प्रत्येक राज्य की बाहरी नीति को बहुत कुछ प्रभावित करता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब अनेक बड़े बड़े राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय जनमत के सामने झुकना पड़ा। उदाहरणतः जब अक्टूबर 1956 में स्वेज नहर पर इजराइल के साथ मिलकर ब्रिटेन व फ्रांस ने आक्रमण किया था, तो समूचे अंतर्राष्ट्रीय जनमत ने एक स्वर में उसके आक्रमण की तीव्र भर्त्सना की थी, जिससे बाध्य होकर ब्रिटेन और फ्रांस की मिस्र की भूमि से अपने सैनिक हटाने पड़े थे। दूसरा उदाहरण अल्जीरिया का है, जिसे स्वतंत्रता देने के लिए फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय जनमत के सम्मुख झुकना पड़ा था। आंशिक निःशस्त्रीकरण के संबंध में की गई मास्को संधि आणविक अस्त्रों के विरुद्ध बन रहे अंतर्राष्ट्रीय जनमत का ही एक परिणाम कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत के कारण ही साम्राज्यवादी देशों को एक के बाद एक एशियाई अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत अंतर्राष्ट्रीय संघ एवं संस्थाओं द्वारा संप्रभु को बाहरी संप्रभुता निश्चित रूप से नियंत्रित होती है, और यह नहीं कहा जा सकता कि संप्रभु बाहरी दृष्टि से निरंकुश प्रभुसत्तावान होता है। उपयुक्त आधारों पर संभवतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त है। ऑस्टिन एक न्यायशास्त्री था, अतः उसने अपने सिद्धांत की विवेचना करते समय अपने व्यवहारिक पक्ष का उतना ध्यान नहीं रखा जितना कि विधि पक्ष का। वर्तमान लोकतंत्र के युग में ऑस्टिन का सिद्धांत इसलिए भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान में राज्यों और सरकारों को प्राय सभी अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। ऐसी स्वतंत्रता अवस्था में किसी भी सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन करके मनमानी करना आसान नहीं होता, परंतु उपयुक्त आलोचनाओं के होते हुए भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। उसके बिना समाज में केवल अव्यवस्था ही नहीं फैल सकती, अपितु राज्य का अस्तित्व को संकट में पड़ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उसके द्वारा संप्रभुता के जिस कानूनी पहलू पर बल दिया गया है वह बड़े महत्व का है, क्योंकि उसके द्वारा संप्रभुता के लौकिक व राजनीतिक रूपों की अनिश्चितता निश्चितता में बदल जाती है। इस सिद्धांत को एक तार्किक सिद्धांत की संज्ञा दी जा सकती है।